वचन। नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम से भजन संहिता नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा। पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी मित्रों का जो पहली बार इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम इन दोनों अध्ययन में भजन संहिता नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका अध्ययन हमने पिछले अध्ययन में किया वो अध्याय 109 था। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार इस भजन में परमेश्वर हमसे बातें करता है। तो आइए इससे पहले हम प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमें दिया है, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि हमारे जीवन आपके द्वारा दिए गए हैं। आज इस वक्त जब हम आपके वचन में से सुनते हैं, सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, हमारी विनती है कि आप हमें से प्रत्येक पर अनुग्रह प्रदान करें, हमें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जो कुछ भी हम सुनते हैं समझ सकें, ग्रहण कर सकें, अपने जीवन में प्रभु उसे लागू कर सकें। हमारी प्रार्थना हर एक भाई बहनों के लिए है, विशेष करके उनके लिए जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशानी अवस्था में हैं या किसी प्रकार के दबाव में हैं, आप उनकी सुधि लीजिए, इस अध्ययन पर अपनी आशीष दीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि यहूदा इस्करियोती के मृत्यु के बाद उसके खाली पद के लिए पत्रस ने चुनाव करवाया। अब देखिए कि यह भजन यहूदा इस्करियोती का कैसा वर्णन करता है। तो आइए आप मेरे साथ भजन संहिता 109 उसके 6-9 पद को निकाल लें। 6-9 पद में हम पढ़ते हैं, तू उसको किसी दुष्ट के अधिकार में रख और कोई विरोधी उसकी दाहिनी ओर खड़ा रहे। जब उसका न्याय किया जाए तब वह दोषी निकले और उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए। उसके दिन थोड़े हों और उसके पद को दूसरा ले। वह बच्चे अनाथ हो जाए और उसकी स्त्री विधवा हो जाए। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम पाते हैं जिससे स्पष्ट होता है कि यहूदा इस्करियोती का परिवार था, उसके बच्चे भी थे। तब हम आगे देखते हैं भजन संहिता 109 उसके 10 पद में, और उसके लड़के मारे मारे फिरें और भीख मांगा करें, उनको अपने उजड़े हुए घर से दूर जाकर टुकड़े मांगना पड़े। मेरे प्रियो, आप इस प्रतिशोध की प्रार्थना से अधिक भयानक बात और कुछ नहीं देख पाएंगे। यह प्रार्थना यहूदा के लिए है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आज के कुछ न्यायी और संस्थाएं यहूदा को निर्दोष कहते हैं। परमेश्वर का वचन इस विषय में अति स्पष्ट है। यहूदा दोषी था और भटक चुका था। यह भजन भटके हुए की दशा को अत्यधिक भयानक बताता है। भटक जाना एक भयानक स्थिति है। और सच तो यह है कि मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसके 24 पद में प्रभु यीशु ने कहा है, उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। प्रभु यीशु ने स्पष्ट कर दिया कि भटके हुए मनुष्य की दशा अति भयानक है। तब हम योहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 36 पद में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने बड़े ही अद्भुत नियंत्रण के साथ में अंधकार और ज्योति के विषमता को प्रकट की है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हाँ, मैं नहीं जानता कि इस पद को और अधिक कठोर कैसे बनाया जाए। भटके हुओं के लिए और भी एक अवसर होगा और आशा का क्षेत्र व्यापक है। या परमेश्वर के पास अन्य कोई मार्ग है? परमेश्वर के वचन से सर्वथा भिन्न शिक्षा है। परमेश्वर का वचन तो कहता है, जिसने परमेश्वर के पुत्र को ग्रहण नहीं किया उस पर परमेश्वर का प्रकोप बना रहता है। हम पर जो परमेश्वर का क्रोध था उसे प्रभु यीशु ने क्रूस पर उठा लिया है। उसने यह हमारे लिए किया और हमारे उद्धार का एकमात्र मार्ग है। उस पर विश्वास करना अति आवश्यक है। यदि हम उसमें विश्वास न करें तो परमेश्वर का क्रोध हम पर बना रहेगा। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में इन सारी बातों को गौर फरमाएं, ध्यान दें। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 109 समाप्त होता है और अब हम आगे बढ़ेंगे जहाँ पर 110 अध्याय से हम अध्ययन करेंगे। भजन 110 उसके एक पद में लिखा है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। ध्यान दीजिए, यह भजन असाधारण है क्योंकि इसमें प्रभु ईश्वर के ईश्वरत्व का प्रकाशन है। आप इस भजन को पढ़कर उसके ईश्वरत्व का इनकार कर ही नहीं सकते। यह भजन अनेक बार नए नियम में संदर्भित किया गया है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 34 और 35 पद में, इब्रानियों के पत्री 1 अध्याय के 13 पद में, इब्रानियों के पत्री 5 अध्याय के 6 पद में, इब्रानियों 6 उसके 20 पद में, इब्रानियों 7 के 21 पद में, इब्रानियों 10 उसके 12 और 13 पद में। जब प्रभु यीशु के बैरी उस पर अंतिम वार कर रहे थे तब उन्होंने उसे देशद्रोही सिद्ध करने के लिए जाल बिछाया। ये लोग हेरोदपंथी थे, उसके अनुयायी थे। जब वे सफल न हुए तो सदूकियों ने मूसा की व्यवस्था के संबंध में उसे फंसाना चाहा। जब वे भी सफल न हुए तो धर्मपंथी फरीसियों ने उसे फंसाना चाहा। यीशु के उत्तर ने उन्हें निरुत्तर कर दिया। यीशु ने उनसे एक प्रश्न पूछा, मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 41 से 46 पद में। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय तुम क्या सोचते हो, वह किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे चरणों की नीचे या चौकी के नीचे न कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? इसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका। देखिए, यीशु ने सीधा प्रश्न किया था, मसीह किसका पुत्र है? फरीसियों ने उत्तर दिया कि वह दाऊद का पुत्र है। यह सुनकर यीशु ने उन्हें भजन संहिता 110 का स्मरण करवाया कि उन्हें धर्मशास्त्र की मसीह संबंधित यहूदी व्याख्या के अपने अपूर्ण ज्ञान का बोध हो। दाऊद द्वारा लिखा गया यह भजन व्यक्त करता है कि यहोवा दाऊद से बात कर रहा है। दाऊद मसीह को मेरा प्रभु कहता है और मसीह को दाऊद का पुत्र मानने वाले यहूदी के सामने यह भजन है, जिसमें दाऊद मसीह को अपना प्रभु कहता है और उसे बड़ा बताता है। इसमें कहा गया है कि मसीह एक राजा से कहीं अधिक होगा, वह मात्र एक राजनीति का शासक नहीं। अब क्योंकि इस भजन में दाऊद उसे प्रभु कहता है, तो वह उसका पुत्र कैसे होगा? प्रभु यीशु प्राकृतिक रूप से जन्म लेकर उसका पुत्र नहीं हो सकता, उसे तो अलौकिक रूप से जन्म लेना था। अतः यह भजन स्पष्ट करता है कि इसराइल का मसीह प्रभु यीशु का जन्म कुंवारी से हुआ है। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है। यह दो बराबर के व्यक्तियों का वार्तालाप है। परमेश्वर परमेश्वर से बात कर रहा है। इब्रानियों के पत्र 1:13 में लिखा है, स्वर्ग दूतों में से उसने किस से कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। यह प्रभु यीशु के ईश्वरत्व को प्रकट करता है। इससे अधिक हमें और क्या समझाया जाए? जो ये कहते हैं कि बाइबल प्रभु यीशु का परमेश्वर होना नहीं बताती, वे वचन के इस भाग से परिचित नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूँ। जी हाँ, भजन संहिता 110 उसके 2 में हम पढ़ते हैं, तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा, तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। ध्यान दीजिए, यह पद सियोन में राज्य करने हेतु पृथ्वी पर यीशु के आगमन की चर्चा करती है। इस समय के संबंध में यशाया ने कहा, जिसे हम 2:3 में देखते हैं, बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। जी हाँ, यरूशलेम पृथ्वी की सरकार का केंद्र होगा। परमेश्वर के पास निश्चय ही इसराइल के निमित्त एक भावी योजना है। हम भजन संहिता 110 के 3 में पढ़ते हैं, तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं, तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान होकर और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास है। तेरे पराक्रम के दिन यीशु को ग्रहण करने का एक महान समय होगा जो संसार ने कभी देखा हो। स्पर्जन कहा करते थे, परमेश्वर के पास खोए हुओं से अधिक उद्धार प्राप्त मनुष्य होंगे। आज ऐसा दिखाई नहीं देता है, अतः निराश ना हो। आज परमेश्वर का काम इतना अच्छा ना हो, परंतु उसका काम पूरा नहीं हुआ है। उसके पीछे उद्धार प्राप्त मनुष्यों की भीड़ अवश्य है, परंतु उसके सामने कहीं अधिक मनुष्य है। उसके पास भविष्य के लिए महान योजना है। हम भजन संहिता 110 उसके 4 में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा, तू मेलकिसेदेक के रीति पर सर्वदा का याजक है। मेरे प्रियो, यह एक और महत्वपूर्ण सत्य है। प्रभु यीशु मेलकिसेदेक के स्तर का महायाजक है। यह सत्य इब्रानियों की पत्री में प्रकट किया गया है, क्योंकि यह परमेश्वर के वचन का सबसे बड़ा सत्य है। मैं एक संदर्भ देना चाहता हूँ, इब्रानियों के पत्री 5:6-10 में लिखा है, इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलकीसेदेक के रीति पर सदा के लिए याजक है। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया, और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसेदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु का याजक पद पुराने नियम के हारून के पद या लेवी याजक पद से बड़ा है। ये पद प्रभु यीशु के मनुष्यत्व और ईश्वरत्व दोनों को प्रकट करते हैं। तब हम आगे पढ़ते हैं भजन संहिता 110 उसके 5:6 में, प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा, वह जाति जाति में न्याय चुकाएगा, रणभूमि शवों से भर जाएगी, वह लंबे चौड़े देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा। ध्यान दीजिए, मसीह फिर न्याय करने आएगा। भजन संहिता 2:9 में स्पष्ट कहता है, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के वर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। आगे लिखा है 110:7 में, वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा, इस कारण वह सिर को ऊंचा करेगा। मुझे इस पद के संबंध में डॉक्टर गैबलिन की बात बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने कहा, यह अंश एक बार फिर हमारे सामने प्रभु यीशु की दीनता और महानता को प्रकट करके रखता है। उसकी दीनता तो यह है कि उसने मार्ग में नाले से पानी पिया। हमें गिदोन के 300 योद्धाओं का स्मरण आता है जिन्होंने कुत्तों के समान पानी पिया और अंत में विजयी होकर नाम कमाया। परंतु वह तो इससे भी अधिक गहराई में गया। उसने कष्टों और मृत्यु के गहरे जल से पिया था, इसलिए परमेश्वर ने उसे बहुत ऊंचा उठाया। यह कैसा अद्भुत भजन है। मेरे मित्रों, यहाँ पर भजन संहिता 110 समाप्त होता है और अब हम भजन 111 में देखेंगे। विषय है परमेश्वर के कामों के लिए हालेलुया। यह भजन परमेश्वर के कामों का हालेलुया भजन है। इब्रानी में यह अक्षर क्रम में है जो अंग्रेजी अनुवाद में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ हालेलुया भजनों की श्रृंखला में 3 भजन है जिनमें यह पहला भजन है, 111 से 113 भजन में। और इस भजन में परमेश्वर के काम और उसके द्वारा लाई गई मुक्ति के लिए उसकी स्तुति की गई है। यह एक नया गीत है जो स्वर्ग में गाया जाएगा। पुराना गीत सृष्टि का गीत है और नया गीत मुक्ति का गीत है। दोनों गीत इस भजन में हैं। तो आइए आप मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 111 उसका एक पद। लिखा है, यह की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यह की स्तुति करो अर्थात हल्लेलुया। अब स्तुति योग्य उसके काम को देखें। भजन 111 के 2-4 पद में लिखा है, यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। मेरे प्रियो, जगत की उत्पत्ति को प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम मानने से पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु की महिमा समाप्त हो जाती है, वरन उसकी महिमा लूट ली जाती है। यह प्रभु की मुक्ति वरन उसका उद्धारकर्ता होने का ही इनकार है। यदि आप उसे उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो आप उसे सृष्टिकर्ता भी मानेंगे। अब भजनकार हमें प्राप्त मुक्ति का उल्लेख करता है। यह हालेलुया का एक ही भाग है। भजन संहिता 111 उसके 9 पद में लिखा हुआ है, उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है, उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है, उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। ध्यान दें, यहाँ रेवरेंड शब्द है जिसका अर्थ है पवित्र और भय योग्य। पवित्र परमेश्वर भय योग्य है। यह पद मनुष्य को कभी नहीं देना चाहिए, यह केवल परमेश्वर का पद है। अतः पादरियों के लिए यह शब्द काम में नहीं लेना चाहिए। परमेश्वर के पास अपने लोगों के लिए मुक्ति है। भजन संहिता 111 के 10 में लिखा है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। मेरे प्रियो, आओ हम परमेश्वर के कामों के कारण उसकी स्तुति करें। यहोवा के काम महान है, उसकी सृष्टि में उसके काम महान है, जी हाँ, और उसकी सर्वशक्ति तथा उसकी अनंत बुद्धि का वर्णन करते हैं। उसका काम उसके मुक्ति कार्य में और भी अधिक महान है, जो उसकी धार्मिकता, उसकी मर्यादा और महिमा का वर्णन करता है। अंत में एक दिन ऐसा आएगा जब मुक्ति कार्य परिपूर्ण होगा और सब वस्तुएं उसके पांव तले हो जाएंगी। उस समय उद्धार प्राप्त जातियां और सृष्टि स्वयं उसकी स्तुति करेंगी। हालेलुया। मेरे भाई, आप भी कह सकते हैं हालेलुया। यहां पर भजन संहिता 111 समाप्त होता है। हम देखेंगे भजन 112 जिसका विषय है परमेश्वर की धार्मिकता के प्रति हालेलुया। यह अद्भुत हालेलुया भजन और इब्रानी में अक्षरों के क्रम में है जो अंग्रेजी में खो गया है। इसमें इब्रानी के 22 अक्षर हैं। इब्रानी अर्थात यहूदियों का मूल भाषा। इसमें परमेश्वर की धार्मिकता के प्रति स्तुति पर बल दिया गया है। अपनी धार्मिकता के कारण परमेश्वर पाप का न्याय करेगा। क्या आप प्रसन्न नहीं हैं कि परमेश्वर जो है सो है? अब मान लीजिए कि वह शैतान है और हमें धोखा देना और नष्ट करना चाहता है। यह तो सोचना भी भयानक है। परंतु परमेश्वर भला है, परमेश्वर धर्मी है और इसी कारण उसे पाप का पाबंद करना है। एक दिन ऐसा आएगा जब वह सब ठीक करेगा। मैं भी चाहता हूँ कि वह सब ठीक कर दे। मैं अपने ही जीवन में बहुत कुछ सुधार चाहता हूँ। क्या आप नहीं चाहेंगे? यह उसकी स्तुति के लिए कारण नहीं है। मेरे प्रियो, हम 112 उसके एक पद में पढ़ते हैं, लिखा है, यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसकी आज्ञाओं को तुच्छ न जाने। वे एक दर्पण है जो आपकी वास्तविकता को प्रकट करते हैं। 10 आज्ञाओं पर रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुत करने के बाद मैंने श्रोताओं से पत्र प्राप्त किया। एक ने लिखा था, मुझे यह बोध हुआ कि मैं कैसा भयानक पापी हूँ और इसी कारण से मैं परमेश्वर से दूर था। एक महिला ने लिखा कि वह परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेने का पाप करती थी, परंतु परमेश्वर का वचन सुनने के बाद उसने असामान्य अंगीकार किया। यह इसलिए हुआ कि उसने स्वयं को परमेश्वर के दर्पण में देखा। परमेश्वर की आज्ञा यही कहती है, आज्ञाओं को तुच्छ न जाने। जी हाँ, परंतु यदि आप सच कहें तो आप उनके पालन से उधार नहीं पाएंगे। वे प्रकट करती हैं कि आपको उधार की आवश्यकता है, सिर्फ आपको इसका बोध होता है। भजन संहिता 112 उसके 3 पद में लिखा है, उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। परमेश्वर की धार्मिकता अपरंपार है, वह कभी नहीं घटेगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर धर्मी है। भजन संहिता 112 उसके 4 पद में लिखा है, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयावान और धर्मी है। हम वास्तव में नहीं जानते कि परमेश्वर कैसा भला है। यदि हम जान ले तो हम हालेलुया गीत को अधिकाधिक गाएंगे। जी हाँ, यह सच है। आइए हम भजन संहिता 112 उसके 6 पद को पढ़ें। लिखा है, वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा, परमेश्वर की दृष्टि से उसके अपने अनंत काल तक विलोप न होंगे। भजन संहिता 112 उसके 9 पद में हम पढ़ते हैं, उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। परमेश्वर गरीबों में रुचि रखता है और केवल उसी का गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम सफल होगा। राजनीतिक दल उसके इस कार्यक्रम में रुचि नहीं रखते हैं। वे तो स्वयं ही समस्या का समाधान उत्पन्न करना चाहते हैं। समस्या तो यह है कि वे अपना ही भला करते हैं, गरीबों का नहीं। जी हाँ, आज हम अपनी नजरों को उठाकर देखते हैं तो ऐसा ही पाते हैं, परंतु परमेश्वर भिन्न है। भजन संहिता 112 उसके 10 पद में लिखा है, दुष्ट इसे देखकर कूढ़ेगा और दांत पीस पीस कर गल जाएगा, दुष्टों की लालसा पूरी न होगी। वह दिन आता है जब दुष्टता का अंत होगा, वह सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर भजन संहिता 112 समाप्त होता है। अब हम भजन संहिता 113 में देखेंगे, जिसका विषय है परमेश्वर सृजनहार और तारनहार का हालेलुया गान, परमेश्वर के प्रताप का यह भजन हालेलुया भजनों में से 113 से 118 का भजन का प्रथम भाग है, अर्थात प्रथम भजन है। ये भजन फसा, पेंतिकोस्त, झोपड़ियों के पर्व और शायद सब पर्वों पर गाए जाते थे। यह स्तुति आराधना का एक मूल्यवान और आनंददायक भजन है। तो मित्रों, आइए हम भजन संहिता 113 उसके 1 पद को पढ़ें। यह की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हमें परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लेना है, हमें परमेश्वर की स्तुति करना है, यह की स्तुति करना है। यह स्तुति कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि यह सृष्टि के प्रभु, सृष्टि के मुक्तिदाता की स्तुति है। भजन संहिता 113 उसके 2-6 पद में हम पढ़ते हैं, यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है, यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। परमेश्वर ऐसा महान है कि उसे आकाश को देखने के लिए भी झुकना पड़ता है। अब देखें परमेश्वर क्या करता है। भजन संहिता 113 उसके 7 पद में लिखा है, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। ध्यान दीजिए कि वह उद्धारक और मुक्तिदाता है। भजन संहिता 113 उसके 8 और 9 पद में लिखा है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपने प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए, वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। याह की स्तुति करो, हालेलुया, याह की स्तुति करो। मेरे मित्रों, यह प्रभु की स्तुति का समय है। मैं भजनों के इस अध्ययन में एक बात स्थापित करता हूं और वह है मनुष्य को प्रभु की स्तुति में लाना। काश परमेश्वर के जन उसकी स्तुति करें। मेरे प्रियो, आज किसी से तो कहें कि परमेश्वर भला है और उसकी भलाई का अपना अनुभव सुनाए और वे इस बात को जान जाएं कि परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य किया है, करना चाहता है, करेगा, और इसके बदले में वह चाहता है कि हम उसकी स्तुति करें। हम इस बात को जान ले कि वह भला परमेश्वर है। वह मुझसे और आपसे, हम सबसे प्रेम रखता है। मेरे प्रियो, आइए आज हम इस बात को स्मरण करें और प्रभु के पास आएं और उसकी स्तुति करें और हालेलुया कहकर उसकी महिमा करें। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आज आप इस वचन के अनुसार परमेश्वर की स्तुति करेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तेरा घर दुआ का घर हो, तेरा घर सीहा, पत्थर चिल्ला उठेंगे।